أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو آج سوالات کا سیشن ہے اور امید ہے کہ آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ کتنے سوالات ہیں آ رہے ہیں اور پہلے سوال یہ آئے کہ جب اللہ نے شیطان کو قید کر دیا تو ہم کو روزے میں کیسے بہکا سکتا ہے یا پھر اپنی حاجات نفس پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ شیطان کو ماہ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے تاکہ اس کے بندے آسانی کے ساتھ بغیر کسی بہانے کے بیٹا پہلے آپ لوگ باتیں کر لیں، میں چلا جاتا ہوں، جب سائلنٹ ہو جائیں پھر مجھے بلا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ لوگ ڈسکس کر لیں، اس کے بعد جب ڈسکس کر چکے تو مجھے بلا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کنٹینیو کروں یا جاؤں؟ ہاں سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا تو وہ روزے میں ہم کو کیسے بہکاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت کے سبب شیطان کو قید کر دیا، کیوں؟ تاکہ اس کے بندے آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں. یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بہکاتا کیسے ہے؟ جب وہ قید کر دیا جاتا ہے تو وہ بہکا نہیں سکتا، بلکہ ہم سال بھر یعنی 11 مہینے میں، یعنی عید کی شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر سے لے کر اور اگلے سال شعبان کی 30 تاریخ یا 29 تاریخ تک اس کے کہنے پہ اتنا چل چکے ہوتے ہیں کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری عادت بن جاتی ہے، ہماری عادت بن جاتی ہے کہ وہ بہکاتا نہیں بھی ہے، پھر بھی ہمارے ہم عادت کی بنا پہ بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اس بنا پر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیں ماہ رمضان میں نہیں بہکا سکتا. اب اگر کوئی چیز بہکاتا ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو وہ ہمارا نفس ہے، ٹھیک؟ وہ نفس ہے کہ جسے ہم نے عادت ڈال دی ہے شیطان کے کہنے پر چلنے کی، سال کے 11 مہینے، ٹھیک، 365 دنوں میں سے 30 دن نکال دیں تو 334 دن، 334، 334 دن ہم اس کے کہنے پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو عادت ڈال رہے ہوتے ہیں. اس بنا پر یہ 334 دن ہمیں عادت ہو چکی ہوتی ہے بہت آسانی کے ساتھ. اچھا، شیطان کا کام دعوت دینا ہے. دعوت دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے میں کل میں نے بتایا ہاتھ پکڑ لے، بلکہ شیطان صرف سیٹی بجاتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ایک بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر انسان کا، ایک نوجوان کا ارادہ قوی اور مضبوط ہو تو وہ کبھی نہیں بہکا سکتا. یعنی آپ یہ کہیں کہ شیطان جس نے 6000 سال 5000 سال عبادت کی اور پھر وہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نے اسے چھوٹ دی اور وہ بہکا رہا ہے، وہ پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک بہکاتا رہے گا، تو ہم تو اس کے سامنے نہیں جیت سکتے. اگر شیطان آپ کو فریب دے سکتا ہے تو آپ بھی شیطان کو فریب دے سکتے ہیں. اگر شیطان آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ شیطان کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ کو ہنر آنا چاہیے، آرٹ آنا چاہیے کہ شیطان کو کیسے دھوکہ دیا جائے. ڈوج دینا جانتے ہیں نا، ہاکی میں اور فٹ بال میں کیا ہوتا ہے، جب آپ گیند لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے سے اس کو روکنے کے لیے کوئی کھلاڑی آتا ہے، تو بعض اوقات آپ رائٹ کا سگنل دے کے لیفٹ میں مڑ جاتے ہیں یا لیفٹ کی طرف اشارہ کر کے رائٹ میں مڑ جاتے ہیں، یہ ڈوج دینا ہوتا ہے. یہ آرٹ اگر ہمیں آ جائے کہ ہم شیطان کو فریب دینا سیکھ جائیں تو ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے. رسول اللہ مدینے کی گلیوں سے جا رہے تھے، دیکھا کچھ نوجوان ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا کہ یہ پتھر کون اٹھائے گا، یہ کام کون کرے گا، لانگ جمپ کون مارے گا، تو وہاں پر بھی بچے جو تھے نوجوان ویٹ لفٹنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کون زیادہ طاقتور ہے. رسول اللہ گزرے تو انہوں نے کہا آپ آئیے ہمارے درمیان، ریفری کے فرائض انجام دیجیے. رسول اللہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یہ جاننے کے لیے کہ تم میں پاورفل کون ہے، طاقتور کون ہے، پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب نوجوان بڑے پریشان ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم میں طاقتور ترین کون ہے اور ہم پتھر بھی نہ اٹھائیں، یہ بھی معلوم ہو جائے ہمیں. تو انہوں نے پوچھا تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ جو اپنی خواہشات نفس پر قابو پا لے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان موجود کہلائے گا. طاقتور ترین انسان کون ہے؟ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گناہ پر قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرنا انسان کو فرشتوں سے افضل کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں نہ محرم کو نہیں دیکھتا، میں بہرا ہوں، مجھے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی، میں گانے غیبت اور برائیاں نہیں سنتا، میں گونگا ہوں، میں کوئی برے الفاظ نہیں بول سکتا، تو کیا یہ فضیلت شمار ہوگی اس کے لیے؟ نہیں. انسان کے پاس آنکھیں ہوں گناہ نہ کرے، کان ہو کنٹرول کرے، زبان ہو قابو میں رکھے. اس بنا پر شیطان صرف دعوت دیتا ہے، صرف ایک برائی کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور طاقت و قدرت نہیں ہے اس کے پاس. روز قیامت کیا ہوگا؟ سب لوگ لڑ جھگڑے ہوں گے، تم نے گناہ کیوں کیا، تم نے گناہ کیوں کیا، تم نے گناہ کیوں کیا. شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے وعدہ دیا تھا، شیطان. اب سب کس کو پکڑ رہے ہیں؟ شیطان کو. شیطان کو بلایا جائے گا، آؤ بھائی آؤ کلیئر کرو حساب. شیطان کو بلایا جائے گا، شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا تھا، سچا وعدہ، کہ نیک کام کرو گے جنت میں، برے کام کرو گے جہنم میں. وعدتکم، میں نے بھی ایک سبز باغ تمہیں دکھایا تھا، وعدہ کیا تھا، گناہ کرو گے بڑا انجوائمنٹ ہوگا، گناہ کرو گے انجوائے کرو گے، گناہ کرو گے مستی ہوگی، موج ہوگی، جوانی ہوگی، یہ ہوگا. فاخلفتکم، میں نے اسے الٹا کر دکھایا. فلا تلومونی انفسکم، آپ بیٹھ جائیں، اس کو نہ ہلائیں، یہ بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہلاتے ہیں نا تو یہ سارے بچے وہ کیمرے کے ساتھ ساتھ گھوم رہے، تو کس کی تصویر آ رہی ہے؟ آخر میں آپ سب کی مووی بنا دوں گا تاکہ آپ سب کی تصویر آ جائیں. ٹھیک ہے، شیطان کیا کہے؟ فلا تلومونی انفسکم، لوم انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو کہو کہ اللہ نے ایک وعدہ دیا تھا، تم اسے چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے پہ یقین کر گئے. تو شیطان کی عادت ہمیں ہو جاتی ہے، شیطان نہیں بہکاتا، ہم اپنے آپ کو عادت ڈال چکے ہوتے ہیں. یہ سوال کلیئر ہے؟ خود دوسرے سوال ہمارے موضوع سے ریلیٹ نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے نوجوانوں کے مسائل جو بتائے تھے، جن میں سے ایک مسئلہ فیس بک کا اور انٹرنیٹ کا تھا اور ٹی وی چینل کا تھا. اکثر نوجوان اس چیز کو برا نہیں سمجھتے اور وہ اس کا گناہ یا برا اس کو گناہ یا برا نہیں جانتے. ہر فحاشی پروگرام دیکھتے ہیں تو نوجوان کو کس طرح اس چیز سے اور مسائل سے کیسے اصلاح کرے گا؟ آیا اصلاح کر سکتے ہیں تو کس طرح؟ وضاحت کریں. شکریہ والسلام. کل میں نے بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہماری نظر میں گناہ بہت بڑا کوئی گناہ ہوگا. اس لیے حدیث میں کہ لا تنظر الی المعصیہ، لا تنظر الی صغر المعصیہ بل انظر الی من اسیتا. گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف توجہ مت کرو، یار یہ چھوٹا گناہ بھی کر لیتے ہیں، صحیح، بلکہ یہ دیکھو کہ تم مخالفت کس کی کر رہے ہو، کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو، کس کے اصولوں کو توڑ رہے ہو. بات ہے، بات یہ دیکھیں، کالج اور یونیورسٹی آپ کو لائن آف ایکشن دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ پڑھیں گے. یہ کیمپ، یہ درس، یہ لیکچر، ये सारी चीजें लाइन ऑफ एक्शन है आपके लिए, गाइड कर सकती हैं आपको कि आप ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता नेकी का, ये रास्ता बदी का रास्ता है, ये अच्छाई का रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है। अमल करना ना करना किसका काम है? आपका। एक बहुत ही सादी सी मिसाल मैं दूं, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सादी सी मिसाल मैं दूं, एक क्रिकेट प्लेयर मैदान में आता है, ग्राउंड में आता है, और उसकी कोशिश होती है वो सेंचुरी स्कोर करे। अगर तमाशाई, तमाम तमाशाई उसके खिलाफ भी जमा हो जाएं, हूटिंग करें, क्लैपिंग करें, सीटी बजाएं कि तुम आउट हो जाओ, तुम फेल हो जाओ, तुम सेंचुरी स्कोर ना कर सको, लेकिन अगर वो अपने इरादे में पक्का है, मुसम्मम है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। लेकिन अगर जितने भी तमाशाई हैं, उस जितने भी क्राउड हैं, पूरा क्राउड मिलकर भी क्लैपिंग करे, तालियां बजाए, अप्रिशिएट करे उसे कि तुम सेंचुरी स्कोर करो, लेकिन अगर वो सट्टा खेल चुका हो और सेंचुरी स्कोर ना करना चाहे, तो 1,00,000 तमाशाइयों की क्लैपिंग और तशवीक और अप्रिशिएट, उसको अप्रिशिएट करना भी उसको सेंचुरी नहीं करा सकता। कौन उसे सेंचुरी कराएगा? वो खुद, उसका इरादा। ये तमाम चीजें आपको गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं हलाल हराम। ये आप हैं कि आपने कौन सा वे चूज करना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ये आपका काम है। इस बिना पर ये बुराइयां जो हमने बयान की हैं, इनको अगर आप ओबे करेंगे, इनको चलेंगे, इनको कंसीडर करेंगे, तो आप बुराई से बच सकते हैं। वाइल्ला अगर रसूलुल्लाह भी आ जाए, इमाम ज़माना भी आ जाए, कोई बुराई से ना बचना चाहे तो बुराई से नहीं बच सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की मैदान करबला में, लेकिन जो बुराई से नहीं बचना चाहते थे वो बुराई से नहीं बचे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ा मजेदार सवाल आया है, कहते हैं कि लड़कियों के साथ क्यों बात करना मना है, जब साथ पढ़ रहे हैं और कुछ देर, फ्यू मंथ्स या इयर्स साथ रहते हैं, पढ़ाई के साथ डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन जब इतना अरसा साथ रहे तो कुछ फ्रेंडशिप भी हो जाती है, फजूल तो फजूल बात तो कुछ ना कुछ होगी, क्या हाल है? मिसाल के तौर पर आज मेरे घर में ये मसला है, मैं टेंशन में हूँ, ठीक है। देखिए, मेल और फीमेल का ताल्लुक प्लस और माइनस का है, इस बार के जरूर होगा। जब भी मेल और फीमेल मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक लड़का और एक लड़की जहां भी बैठेंगे हराम काम करेंगे, नहीं, हुए ऐसे लोग जिनको मौका मिला, वक्त मुयसर आया, शैतान ने भी बहकाया, लेकिन वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर से एक गुनाह है, खुदा की मुखालफत है, नहीं करनी चाहिए। दिल कह रहा है, शैतान कह रहा है, एंजॉयमेंट है, करो, कोई नहीं देखने वाला, लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया। मेल और फीमेल जहां पर भी बैठेंगे वहां से बुराइयों का आगाज शुरू हो जाएगा, ये नहीं करूंगा हतमन हो जाएगा, नहीं, हो जाता है, यूजुअली हो जाता है, मामूलन हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो ताल्लुकात हैं कि जिसमें तुम बह जाते हो, आज सलाम किया, कल वालेकुम सलाम, आज मुस्कुराए, कल और ज़्यादा ठट्टे मार के हंसेंगे, आज हेलो हाय की तो कल कैफेटेरिया में मिलेंगे, कल कैफेटेरिया में बैठे हुए तो परसों जो है डेट पे लेके जाएंगे, परसों जब हिम्मत और खुल जाएगी तो फिर गुनाह की तरफ जाएंगे। इसलिए हमें मना किया है कि हम नाजायज ताल्लुकात, नाजायज बातें, ये वो बातें जो मामूलन सही समझी जाती हैं, वो भी ना करें, ताकि वो जमीन हमवार ना हो। ये वो स्लोप है कि जिस पे आप खड़े होते हैं, तो मामूलन अक्सर नौजवान हमारे उस स्लोप में, उस ढलवान सतह पर बहते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। और ये काम इतना ग्रेजुअली होता है, इतना स्लो होता है, इतना बतदरीज होता है कि खुद इंसान को इल्म नहीं होता कि मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं, खुद एहसास नहीं होता, वही समझ रहा था मैं सही कर रहा हूं, ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, मेरे घर में टेंशन है, मैं अपनी टेंशन को कैसे रिलीज करूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी क्लास फेलो से बातचीत करके। इस बिना पर हमें मना किया गया है ताकि वो हिस्सा, ताकि वो प्यार और मोहब्बत जो आप अपनी शरीक हयात को देना चाहते हैं वो ना दें। इस बिना पर देखिए, मैंने पहले भी कहा क्लास फेलो है, बातचीत हो सकती है, डिस्कस अगर जरूरी है हो सकता है, नोट्स लिए दिए जा सकते हैं, वो नोट्स वाले साहब आज नहीं आज नहीं आए, लेकिन इससे ज्यादा जब आप इस सर्किल से कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर वो मसाइल पेश आएंगे। रही जहां तक बात इन टेंशंस को, टेंशंस जो हो रही हैं, टेंस जो हो रहा है, डिप्रेशन जो हो रहा है, इसको कैसे रिलीज किया जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज घर है, वालदैन है। अगर वालदैन नहीं है तो कोई यूथ काउंसलर हो, कोई आलिमे दीन हो जिसके पास आप जाएं, या कोई ऐसा तजर्बेकार दीनी अकलमंद दोस्त, सिर्फ दीनी नहीं, दीनी भी और अकलमंद भी, बहुत से अफराद अकलमंद होते दीनी नहीं होते, बहुत से दीनी होते अकलमंद नहीं होते, कोई ऐसे मारे नफ्सियात आलिम दीन के पास जाएं, डिस्कस करें ताकि वो आपको उसका सलूशन बताए, इससे निकलने का रास्ता बताए। बापर्दा औरत पर निगाह करना जायज है या सिर्फ बेपर्दा औरत पर निगाह करना जायज है? बेपर्दा औरत पर तो निगाह करना जायज नहीं है। देखिए, निगाह करने के अहकाम हैं, एक लाइव किसी को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, एक ये देखना है, इसके अहकाम मुख्तलिफ हैं। एक है किसी पिक्चर या मूवी को देखना कि जो लोग बाद में इस मूवी को देखेंगे उसके अहकाम कुछ और हैं, मर्द का मर्द को देखने के अहकाम कुछ और हैं, मर्द का किसी नामहरम को या किसी नामहरम का किसी मर्द को देखने के अहकाम कुछ और हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर ये डिस्कस किया गया या नहीं किया गया, नामहरम औरत को जो पर्दे में है बिना बर एहतियात वाजिब इंसान उस पर, उसके चेहरे पे निगाह ना करे, उसके लिए अपने चेहरे को खोलना जो वजू में धोया जाता है और इतने हाथ कलाई तक खोलना, खोल सकती है, वाजिब नहीं है उसके लिए, खोल सकती है, और बिना बर एहतियात वाजिब इंसान उस नामहरम के चेहरे को ना देखे, क्योंकि वे देखता है तो फिर ऐसा ऐसा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। जहां तक बेपर्दा औरत के देखने का ताल्लुक है तो उसको, जब बापर्दा औरत को देखने के लिए एहतियात है तो बेपर्दा औरत को देखने के लिए बदरजा औला एहतियात मौजूद है। या जैसे कल मैंने बताया था नॉन मुस्लिम खवातीन, गैर मुस्लिम खवातीन कि जिनके बदन के वो हिस्से जो मामूलन खोले जाते हैं, हाथ यहाँ तक या यहाँ तक, या गर्दन या चेहरा या बाल या टांगे, टांगे पूरी नहीं, जो मामूलन उस सोसाइटी में खोले जाते हैं उन्हें देखा जा सकता है बगैर किसी शहवत के। आप नामहरम औरत के चेहरे को बगैर शहवत के देख सकते हैं, लेकिन एहतियात ये कि ना देखें। अब आप कहेंगे जनाब खूब यूरोप में तो सीना भी नजर आता है, थाइस भी नजर आती हैं, वो मिनी स्कर्ट भी पहनती हैं, ये जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है ये झूठी सकाफत होती है, ये उनकी ओरिजिनल कल्चर नहीं है। उस माशरे में जो मामूलन आजा खोले जाते हैं उनको भी बगैर शहवत के देख सकते हैं। इसी तरह तस्वीर के अहकाम आते हैं, बहरहाल ये पूरी तफसील है। अगर लाइव है वो तो लाइव देखना भी ऐसे ही जैसे आप किसी इंसान को यहाँ बैठे देख रहे हैं। टॉक शो में भी जो लाइव शो आ रहा है उसमें भी अगर मुसलमान औरत बेपर्दा है तो उसको नहीं देखा जा सकता है, नहीं, देखना अलग चीज है और बैठना अलग चीज है। हाँ, बहुत से उलमा बैठते हैं, मैं खुद बैठा हूँ, देखें मैं खुद बैठा हूँ, लेकिन वहां पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है उलमा बैठते हैं, खुतबा बैठते हैं, मोहतरम शख्सियत बैठती हैं, अगर वो देखते हैं तो वो अपने अमल के जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। साथ बैठना اس بات کے علامات کہ بعض اوقات ایک اہم مقصد کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آواز کو پاکستانی نیشن تک یا ورلڈ وائڈ جتنے بھی افراد ہیں ان تک پہنچایا جائے, تو اس وجہ سے ہم وہاں جاتے ہیں اور اپنی بات کو ڈیلیور کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں, اپنا اسٹیٹمنٹ دے سکیں, اپنی قوم کی طرف سے, اپنے مذہب کی طرف سے, اپنے فقہ کی طرف سے اس کو ڈسکرائب کر سکیں, بیان کر سکیں. ساتھ بیٹھنا دیکھنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے, وہ انشاءاللہ پھر میں ایڈوائز دوں گا آپ کے ذمہ دار افراد کو کہ وہ اس مسئلے کی جانب توجہ دیں اور احکام, نگاہ کرنے کے احکام کو بیان کریں. خوب لڑکیوں سے دوستی رکھنی صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. میں نے کہا کہ پھر انسان وہی بہکتا چلا جاتا ہے, جس کو میں نے کل بھی بیان کیا, ابھی بھی تقریباً انہی چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ پھر آپ اپنی شریک حیات کی, لائف پارٹنر کی در حقیقت محبت کو اس کو دے رہے ہیں, اس کا لیول کم کرتے جا رہے ہیں اس بنا پر. دیکھیں فرینڈشپ کا معنی کیا ہے, ضرورت وہ جو ضرورت ہو, نہ کہ جسے ضرورت بنا لیا جائے. ایک ضرورت وہ تھی جو واقعی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے ڈسکس کرنا ہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے, کوئی لڑکا نہیں ہے, آپ اسے سمجھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ایسے کا بیٹھے جہاں تنہائی میں نہ ہوں. ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں, دیکھنے کے جو آداب ہیں ان کو ملوز خاطر رکھا جائے, دوسرے جو اخلاقیات ہیں ان کو ملوز خاطر رکھا جائے. لیکن اگر چاہیں کہ جناب دوستی ہو گئی ہے, فرینڈشپ ہو گئی ہے, اس فرینڈشپ کو کلیئر ہونا چاہیے آپ کے نزدیک. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو فرینڈشپ کے موضوع پر ڈسکس کروں گا, فرینڈشپ کیا ہوتی ہے, اس کے حدود کیا ہوتی ہیں, اس کے پرنسپلس کیا ہوتے ہیں, اس کے قوانین کیا ہوتے ہیں, کون سی چیز فرینڈشپ کو نقصان پہنچاتی ہے, کون سی چیز فرینڈشپ کو مضبوط کرتی ہے. اگر ایک لڑکا 15 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے تو اس کی ایک شہوت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بہرحال پورا کرنا ہوتا ہے, جو کہ ایک فطری عمل ہے, جبکہ شادی معاشرے کی وجہ سے ٹرینڈ بن گیا ہے, والدین لیٹ کرتے ہیں. اگر شادی 25 سال کی عمر میں کر دی جائے تو یہ 15 سال سے 25 سال کی عمر ہے, اس میں جوان حرام میں مبتلا ہوگا, تو اس میں نوجوان کا قصور نہیں ہے, تو اس کا گناہ کس کے سر ہے؟ کچھ چیزیں والدین سے متعلق ہیں, کچھ چیزیں ہماری سوسائٹی سے متعلق ہیں, چونکہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم اس سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں. یہ 15 سال سے 25 سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ مجبور نہیں ہیں, شیطان دعوت دے گا آپ کو, سوسائٹی دعوت دے گی آپ کو. اگر شیطان ہی نہ ہوتا گناہ ہی نہیں ہوتا, گناہ کی لذت ہی نہیں ہوتی. اگر کمپٹیشن ہی نہ ہو, میں پہلے ہی آ کے آپ کو ہر ایک کو 100 گریڈز دے دوں, 100 مارکس دے دوں, کمپٹیشن ہی نہ ہو تو ایگزامینیشن کا کیا فائدہ رہ جائے گا؟ شیطان ہے اسی لیے تاکہ آپ کو آزمایا جائے, آپ کی آنکھوں کو, آپ کے کان کو, آپ کے دل کو, آپ کی خواہشات کو, کہ آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں شیطان کی طرف جاتے ہیں. فلیستعفف, قرآن کہتا ہے استعفاف, عفت, پاک دامن رہے نوجوان. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں, میں ایج میں آپ سے بڑا ہوں, یقین ہے آپ کو, علم میں بھی شاید 2 کتابیں میں نے آپ سے زیادہ پڑھی ہوں, لیکن آپ مجھ سے 2 چیزوں میں آگے, اس کا مجھے یقین ہے. غور سے سنیں, آپ 2 چیزوں میں مجھ سے آگے ہیں. ایک تو ٹائم لمٹ آپ کے پاس زیادہ ہے, آپ مجھ سے چھوٹے ہیں, ٹائم لمٹ آپ کے پاس زیادہ ہے. دوسری چیز جس میں آپ مجھ سے آگے ہیں, غور سے سنیں, آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے اور آپ کی روح مجھ سے زیادہ پاک ہے, اس کا یقین کیجیے. آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی اور آپ کا دل مجھ سے زیادہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی طاقت و قدرت آپ کے ہاتھ میں. اس بنا پر 15 سال سے 25 سال تک اگر ہم صحیح دوست کا انتخاب کریں, اگر ہم انجوائمنٹ کے معنی کو چینج کریں, اگر ہم فرینڈشپ کے معنی کو چینج کریں, ایسا ऐसा लगा जैसे धमाका हो गया कोई, चले अच्छा वो जो लोग सो रहे थे वो जाग गए, दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद का। अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहें, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। वो प्लेयर जो आया है सेंचुरी करने, पूरी दुनिया भी चाहे कि वो सेंचुरी स्कोर करे, लेकिन ना करना चाहे तो नहीं कर सकता। अगर आप चेंज करना चाहें, एक नौजवान चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। एक सेकंड, मैं बहुत सारे नेक काम दुनियावी उखरावी करना चाहता हूँ, मगर सुस्ती काहिली में वो काम नहीं करने देती। इस सुस्ती को दूर करने के लिए हम क्या करें? किसी काम की इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इल्म उस काम का, वो इल्म आपके जहन में आपके दिल में इम्पोर्टेंस लेके आएगी। उस इम्पोर्टेंस की वजह से आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देती है, आपकी जेब में एक कागज का टुकड़ा है, एक जेब में 5,000 रुपए का नोट है। बच्चा खेल रहा है, आप भी खामोश हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे ने इस जेब में हाथ डाला, पर्चा निकाली, आप देखेंगे नॉर्मल रहेंगे आप बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपके भतीजे भांजे ने आपकी इस जेब में हाथ डाला जिसमें 5,000 रुपए का नोट था, फौरन आप जो है वो आगे खुल जाएंगी, आप उससे 5,000 का नोट ले लेंगे। बच्चा छीनने की कोशिश करेगा, आप उसे लेने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे अच्छा मैं तुम्हें 50 का नोट दे देता हूँ, बच्चा कहेगा नहीं। आप कहेंगे अच्छा पहले आप 100 का नोट, नहीं। बच्चा कहेगा 50 का, नहीं। आप कहेंगे 20 का ले लो, नहीं मैंने तो 5,000 का लेना है। क्यों? जैसे ही आपको इल्म हुआ ये आम कागज का टुकड़ा नहीं है, ये 5,000 रुपए का नोट है, इल्म आ गया ना, नॉलेज आ गई, उस कागज के दोनों कागज के टुकड़े हैं, उस कागज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। 5,000 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट, फौरन आप चौकन्ने हो जाते हैं। इल्म मार्फत लेके आया, मार्फत इंपॉर्टेंस लेके आई, और इंपॉर्टेंस की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया। सुस्ती काहिली इसलिए होती है कि उस चीज की अहमियत हमारे ध्यान में नहीं होती। तो सही वे से उसकी अहमियत को कसब करें, हासिल करें, ताकि सुस्ती काहिली दूर हो। नौजवान चूंकि अपने अंदर बेपनाह सलाहियत रखते हैं और जब अपनी रूह की तरबियत पर तवज्जो देते हैं, तो फौरन ऐसा कोई वाक्य पेश आ जाता है कि तवज्जो मलहूज नहीं रह पाती। मसलन कोई हादसा वाक्य पेश आ जाता है, फिर एहतजाज और दीगर मसाइल होते हैं जिसकी वजह से नौजवान जज्बादीनी की वजह से माइल होते हैं। बस इन तमाम मराहिल के बाद दोबारा इसे शुरू से तरबियत का अमल शुरू करना पड़ता है, तालीम भी मुतासर होती है। बस इन कामों में जो पेपना अहमियत के हमले मसलन एहतजाज वगैरह, इन पर किस हद तक तवज्जो देनी चाहिए, या ऐसा कोई तरीका तालीम तरबियत तरबियत रूह का बताएं। देखिए इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ कुछ और होती हैं, इनफरादी जिम्मेदारियाँ कुछ और होती हैं। आप इज्तिमाई जिम्मेदारी में भी हो, आप अपनी इनफरादी जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। आप बाजार में भी होते हैं तो क्या शरबत दे के आप रोजा तोड़ लेते हैं? कोई बुराई अगर बयान कीजिए, कहीं दुकान खुली हो तो क्या आप वहां से माल लूट लेते हैं? किसी धरने में गए आप, वहां पे कहीं कत्ल गारत हो रहा है तो क्या आप उसमें शामिल हो जाते हैं? नहीं। आप वहाँ नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, कोई गुनाह का मौका आए तो क्या आप नमाज छोड़ देते हैं? नहीं। इज्तिमाई माहौल में, सोसाइटी में, मार्केट में रहते हुए भी आप अपने इनफरादी फराइज से, अपनी इसलाह से, अपनी इबादत से गाफिल नहीं होते। यही उसूल हर जगह अप्लाई करें, एहतजाज में हो, धरने में हो, मुजाहरे में हो, रैली में हो, कहीं पर भी हो, इनफरादी जिम्मेदारियों से आप कभी अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा भरा नहीं होते। जो हम सोचते हैं क्या शैतान को उसका इल्म होता? नहीं, शैतान को उसका इल्म नहीं होता। हम खुद ऐसी हरकतें करते हैं कि शैतान समझ जाता है कि हाँ ये बहकना चाहता है, हाँ ये टेढ़ा होना चाहता है, हाँ ये फिसलना चाहता है, हाँ ये अपने आप को टोपी पहनाना चाहता है, हाँ ये थोड़ा सा कहता है यार थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी कर लो, थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए, थोड़ी सी जवानी भी हो जाए भी, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, सवाल जवाब भी हो जाएंगे, सवाब भी मिल जाएगा, रोज़ा भी हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। शैतान का इल्म नहीं होता। मैंने कहा डॉज देना सीखे, फरेब देना सीखे शैतान को, और ये आसान है। ये बहरहाल एक तफसील तलब मौजू है कि शैतान को कैसे धोखा दिया जा सकता है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो उसको बयान करूँगा। ये सवाल हो गए, ये सवाल हो गए, ये भी सवाल हो गया। आखिरी सवाल ये है कि अगर शहवत के कॉन्सेप्ट को वाज़े करें। शहवत यानी गुनाह करने की ख्वाहिश, शहवत यानी ख्वाहिश परस्ती, खा वो नामहरम को देखने की ख्वाहिश हो, गुनाह करने की ख्वाहिश हो, किसी को सताने की ख्वाहिश हो, किसी का माल चुराने की ख्वाहिश हो, अपनी जिंसी तस्कीन के लिए जिंसी शहवत को पूरा करने की ख्वाहिश हो, कोई भी ख्वाहिश हो, ख्वाहिश परस्ती शहवत यानी ख्वाहिश परस्ती, ये शहवत। माल की शहवत होती है, माल पे माल कमा रहा है, मुकाम की शहवत होती है, शोहरत की शहवत होती है, मुख्तलिफ किस्म की शहवतें होती हैं। यानी ख्वाहिश परस्ती यानी इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहा होता है, हलाल हराम नहीं देख रहा होता है, नामहरम नजर आती है उसके पीछे, मुकाम नजर आता है उसके पीछे, माल नजर आता है हलाल हराम की परवाह की बगैर उसके पीछे। ये है शहवत, ये है ख्वाहिश परस्ती। इससे हमें बचने से, इससे हमें दूर रहने से, इससे बचने से हमें हुक्म दिया गया कि हमसे दूर रहें, बचें, अपना दामन बचाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरबियत करें ताकि हम इससे दूर रह सकें। कोई और सवाल? आपका क्या सवाल था? देखिए फितरी अमल है, भूख फितरी अमल है, सही, प्यास एक फितरी अमल है, प्यास महसूस होते हैं पानी पीते हैं, प्यास भूख लगती है अब खाना खाते हैं। क्या सिर्फ भूख का लगना और घर में खाने का ना होना क्या आपसे ये कहता है कि आप दूसरे के घर में जाकर डाका डालें, दूसरे की जेब काटें, दूसरे का माल लूटें, दूसरे का मोबाइल स्नैच करके उसको बेच के उसके जो औने औने दामों बेच के जो पैसे मिले उससे जाके जो है वो बर्गर खाएं, आइसक्रीम खाएं? भूख क्या सिर्फ पिज्ज़ा से मिटती है? प्यास क्या सिर्फ आइसक्रीम से ख़त्म होती है? नहीं, अगर आप भूखे भी होते हैं तो घर में जो चीज़ मौजूद होती है आप उसी से इस्तेफादा करते हैं, होता ही नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता जाते ही फौरन घर से टीटी निकाले यहाँ धड़ 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 शुरू हो गया आप, मैं भूखा हूँ मुझे खाना चाहिए, ऐसा होता है नहीं? हाँ नहीं होता है ना, होता ही नहीं होता, नहीं होता। बस शहवत एक फितरी चीज है, आप तकाजा करेगी कि इसको पूरा होना चाहिए, लेकिन जब आम हालात में आपके घर में खाना नहीं होता तो आप ब्रेड खा लेते हैं, आप ब्रेड पर जो है चिकन स्प्राइट लगा लेते हैं, केचप डाल के खा लेते हैं, कुछ और छोटा मोटा जो भी घर में चीज़ होती है, घर का सालन होता है, रात की रोटी होती है उसी को खा लेते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते नहीं करते, वहाँ तो माइंड बड़ा काम करता है, हैं? खुसूस बैचलर जो होते हैं उनके माइंड बड़े काम करते हैं जुगाड़ों पोजिशन में, ठीक। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी शहवत जो है वो तकाजा कर रही है एक अमल का, तो अल्लाह ताला ने आपको इफ्फत दी है कि अपने आपको थोड़ा सा लगाम तो डालें, स्टॉप तो करें, आदत तो डालें। ऐसा तो नहीं कि जनाब जैसे ही आप बालिग हुए फौरन आपने कहा वालदा ग्रामी मुझे जो है वो बीवी चाहिए, अब्बा मोहतरम मैं आपकी बहू लेके आने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना, या ऐसा हो कि आप हाथ पकड़ के लिए अम्मी आपकी बहू है। बिलाखिर अल्लाह ताला ने रेजिस्टेंस पावर दी है, कुव्वत मुदाफियत दी है, इफ्फत दी है, ईमान दिया है, तकवा दिया है, ये भी तो किसी टूल्स का नाम है। जब कोई घर में टूल्स नहीं होते, औजार नहीं होते, आलात नहीं होते, क्या स्कूलों में आपने ताले नहीं खोले बगैर चाबी के? नहीं नहीं तोड़े नहीं है, मैंने बच्चों से सुने हैं ना, किस किस तरीके से ताले खोल खोल के उन्होंने जो है वो पेपर्स निकाले। माशाल्लाह से कितनी क्रिएटिविटी होती है। तो ये सारी क्रिएटिविटी मनफी कामों में क्यों इस्तेमाल होती है, मुस्बत कामों में क्यों नहीं इस्तेमाल होती? जब आप में इतनी सलाहियत होती है कि एक सामने वाली टीम के फास्ट तरीन बॉलर की बॉलिंग को, उसकी उसके हाथों के इशारों को, उसकी फिंगर्स गेंद पर उसकी फिंगर की ग्रिप को आप समझ के, ये इन स्विंगर है, आउट स्विंगर है, ये ऑफ ब्रेकर है, लेग ब्रेकर है, क्या बॉल है, ये यॉर्कर फेंकेगा, ये बाउंस फेंकेगा, आप पहले से तैयार होते हैं। तो क्या शहवत के लिए आप इतने ढीले क्यों पड़ जाते हैं कि जैसे ही शहवत आई 15 साल के हुए आप तैयार बैठे, अल्लाह मियाँ बस जल्दी से जो है वो 15 साल का करें, मैं जल्दी से अम्मी की बहू लेके आ जाऊँ। वहां पर भी टूल्स अप्लाई करें ना, करके देखें, और अगर ना जवाब ना दे इन टूल से तो फिर आप मुझे कहिएगा, फिर मैं आपकी शादी करा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन सिद्के दिल से उन टूल्स को अपनी जिंदगी पे इस्तेमाल करें। तकवा का टूल है, परहेजगारी का टूल है, इफ्फत का टूल है, इन टूल्स का इस्तेमाल तो करें ना, हमने किया नहीं आज तक। ठीक है, इस्तेमाल करना सीखें। अगर चाहें, अगर आप चाहें तो बच सकते हैं, अगर नहीं। एक बहुत ही आसान सा फार्मूला आपको देके जाता हूँ, इसको अप्लाई करके देखिए। मुझे कल पता नहीं, कल मैं आपसे रिक्वेस्ट करके गया था, किस किसने मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया, कि तनहाई में 15 मिनट बैठे, किस किसने किया था? एक दो फजर में चल बैठ के सोचा था अपने बारे में, 10 मिनट सोचा था, 5 मिनट भी सोचा था बहुत है, रात भर सोचा था, 4-5 मिनट से बहुत अच्छा, चलें 10 मिनट भी, 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम तर जिससे सोचा हाथ खड़ा करे। एक दो तीन चार पांच छ सात, चले बहुत अच्छी बात है। एक और रिक्वेस्ट, एक और टूल देके जा रहा हूं आपको। जब भी गुनाह आपको दावत दे और दिल अट्रैक्ट हो जाने, तो हजरत अली अकबर अलैहिस सलाम से तवस्सुल करें। वो भी जवान थे ना, या नहीं थे? आप भी जवान हैं, तवस्सुल करें उनसे के अगले एक बार, आप भी जवान थे, मैं भी जवान हूँ, आपने दीन की खिदमत की, मैं भी दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, ये गुनाह मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये सोसाइटी मुझे नहीं छोड़ रही, ये दोस्त मुझे नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आप तो इनको छोड़ सकते हैं, तो आप मेरी मदद करें, तवस्सुल करें उनसे। अगर दिल से पुकारेंगे तो हजरत अली अकबर आपकी रूहानी मदद करेंगे, लेकिन अगर दिल में वो ये कोने में खांचे में बैठा हुआ है, इंजॉय करना है, अभी मौलाना साहब कह गए, इनको क्या मालूम या लड़की से बात करने की लज्जत क्या होती है, जब कोई लड़की ऐसे में लिखे जानी क्या हाल है, उस वक्त दिल कितना बाग बाग हो जाता है, हेलो ड्यूड कहाँ हो, चलना है फलन जगह, कोरोना की देखनी है, मिले देखने, तो कितने सुस्त भी हो रहे, मर भी रहे हो, ढीले भी पड़े हो, फौरन एक्टिव हो जाते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, होता नहीं होता? तो गुनाह के लिए ऐसा क्यों होता है, नेकी के लिए क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। अगर चेंज करना चाहें तो माह रमजान बेहतरीन फुर्सत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुराइयां नहीं है, सोसाइटी नहीं है, बेपर्दगी नहीं है, बेहयाई नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आप तो ताकत और कुदरत रखते हैं, अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। जनाब क्या हो गया भाई, हैं? ठीक, अच्छा हाँ, आप क्या सवाल कर रहे थे? ठीक, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।